समाधान। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मित्रों, स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का समाधान कार्यक्रम में। मित्रों, एक समुराई जापानी जो योद्धा होते हैं उनमें से एक जो बहुत वीर था, बहुत सारे युद्ध उसने जीते थे, बहुत ही सज्जन था, समाज की भी बहुत सेवा किया करता था, लेकिन मन से थोड़ा अशांत था। वो एक जैन संत के पास पहुंचा। उसने कहा कि महात्मा जी, मैं अपने मन से बहुत निराश रहता हूं, क्योंकि जब मैं दूसरों को देखता हूं कि दूसरे लोग जो कार्य कर पा रहे हैं वो कार्य मैं नहीं कर पा रहा हूं, तो जब भी मैं उनको देखता हूं तो एक निराशा का भाव आता है कि मुझे कुछ और करना है। संत जी ने कहा कि तुम अभी बैठो, बहुत सारे लोग हैं, पहले मैं उनके प्रश्नों का उत्तर दे देता हूं, उसके पश्चात मैं तुम्हारे पास आऊंगा। बैठा रहा वो समुराई, सभी लोगों के प्रश्नों के उत्तर देते देते संध्या की वेला हो गई, शाम हो गई। जब सभी लोग चले गए तो वो महात्मा उस समुराई को लेकर के टहलने के लिए निकल पड़े। चांद निकल चुका था, बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। उस चांद को दिखाते हुए महात्मा जी ने कहा कि वो चांद देख रहे हो? समुराई ने कहा, जी, कितना शीतलता प्रदान कर रहा है वो सारी सृष्टि को, और कितना खूबसूरत लग रहा है ना? समुराई ने कहा, जी। तो महात्मा जी ने कहा कि लेकिन जैसे जैसे रात ढलती चली जाएगी, सवेरा होगा, सूरज निकलेगा और हम प्रकृति को कहीं अच्छे ढंग से देख पाएंगे, पेड़ों को, पहाड़ों को, सभी चीजों को अच्छे से देख पाएंगे, तो मुझे कई बार ऐसा लगता है कि इस चांद का कोई महत्व नहीं है, कोई उपयोगिता नहीं है। समुराई ने कहा कि महात्मा जी, ये आप क्या कह रहे हैं? चांद अपनी जगह पे है, सूरज अपनी जगह पे है, दोनों का अपना अपना महत्व है, अपनी अपनी उपयोगिता है। महात्मा जी मुस्कुराए और उन्होंने कहा कि लगता है कि तुम्हें अपनी समस्या का समाधान मिल गया है। इस सृष्टि पे हरेक व्यक्ति यूनिक है, हरेक व्यक्ति अपना अपना कार्य कर रहा है, हरेक व्यक्ति समाज के लिए बहुत उपयोगी है और हरेक व्यक्ति अपने आप में स्पेशल है। यदि छोटे से छोटे कार्य करने वाले व्यक्ति को देखो या बड़े से बड़े कार्य करने वाले व्यक्ति को देखो, यदि उनके कार्यों को तुम बारीकी से देखोगे तो पाओगे कि समाज में सचमुच हरेक व्यक्ति अपना अमूल्य योगदान दे रहा है। गलती वहां हो जाती है जहां हम दूसरों के साथ अपने आप को कंपेयर करते हैं, तुलना करते हैं कि जो कार्य वो कर रहा है वो कार्य मैं नहीं कर पा रहा हूं। वास्तव में इस सृष्टि में, समाज में जिसी कार्य जो दिया गया है, जो जिस कार्य के लिए नियुक्त है, वो यदि अपने कार्य को परफेक्ट करता है, पूरी ईमानदारी से करता है, लगन से करता है, तो यही वास्तव में उसे बहुत महान और स्पेशल बनाता है। और आप अपने कार्य को बहुत महानता पूर्वक कर रहे हैं, श्रेष्ठता पूर्वक कर रहे हैं, इसीलिए आपको निराश होने की जरूरत नहीं है, आप उसी कार्य को आगे बढ़ाएं। सचमुच कई बार ऐसा होता है ना मित्रों, कि हम अपने गुणों को कम देखते हैं, अपने गुणों को कम आंकते हैं और दूसरों के गुणों को, दूसरों की विशेषताओं को ज्यादा देखते हैं। ये है अच्छी बात, दूसरों की विशेषताओं को देखना, गुणों को देखना, लेकिन उसके द्वारा अपने अंदर हीन भावना ले आना, ये शायद ठीक नहीं है। उनके गुणों को देख के यदि हम भी उन गुणों को धारण करने का लक्ष्य रखें, ये तो अच्छी बात है, लेकिन हीन भावना में ना आ जाएं, ये कंपेयर ना करें कि वो कहाँ है और हम कहाँ हैं, क्योंकि ईश्वर ने सबको बहुत सारी विशेषताओं से नवाजा है, गुणों से नवाजा है। आवश्यकता है अपनी उन विशेषताओं को ढूंढने की और उन्हें उजागर करते हुए उनमें परफेक्ट होने की, समाज की उसके द्वारा सेवा करने की। इसे बहुत गहराई से विचार कीजिएगा मित्रों। ऐसे सुंदर प्रसंग के साथ आज के समाधान की शुरुआत कर रहे हैं और आदरणीय भ्राता जी का स्वागत करते हैं। भ्राता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
थैंक यू।
भ्राता जी, इस विषय पे, इस प्रसंग पे आप क्या कहना चाहेंगे?
देखिए, बाबा हमें ज्ञान देते हुए एक सुंदर चीज कहते थे कि एक किले में हर ईंट का बहुत महत्व है।
जी,
एक ईंट अगर कच्ची लग जाए, सारा किला बहुत सुंदर हो, लेकिन एक ईंट कच्ची लगा दी गई तो दुश्मन उसे ही निकालकर बाकी औरों को निकाल लेगा और रास्ता बना लेगा। इसलिए ये सत्य है कि हर ईंट का, यानी संसार में परमात्मा की हर एक रचना का बहुत ज्यादा महत्व है और हमें इस बात को अच्छी तरह स्वीकार कर लेना चाहिए। और रही बात ये कि अपनी विशेषताओं को जानने की, देखिए, हम ईश्वरीय ज्ञान से एक चीज को समझ पाए थे प्रारंभ से ही कि वो व्यक्ति जो अपनी कमियों को स्वीकार कर ले, जान ले और स्वीकार कर ले और अपनी महानताओं को भी पहचान ले, वो कमियों पर सहज विजयी हो जाता है और उसकी महानताओं को बढ़ाकर वो दूसरों के सेवा में, महान कार्य में लगा सकता है। तो तो हम सभी इस बात को ध्यान में रखेंगे कि हमारा अपना पार्ट है। एक बहुत बड़ी बिल्डिंग बनी है, उसके ऊपर एरियल भी लगा हुआ है, जो बिजली गिरती है वो उसमें समा जाती है। छोटे बारीक तार होते हैं, दिखते नहीं लोगों को, वो अट्रैक्ट नहीं करते किसी को, लेकिन उनका अपना बहुत बड़ा महत्व है। उसके बिना बिल्डिंग्स मतलब सुरक्षित नहीं रहती। एक शक की नजर से रहता, कभी बिजली गिर गई और ये गिर न जाए बिल्डिंग। तो देखिए उस छोटे से एरियल का कितना बड़ा महत्व है। बिल्डिंग में कई ब्यूटीफुल चीजें हो सकती हैं जिन्हें लोग देखने जाते हो किले को, लेकिन हो सकता है उसमें एक बाथरूम का, एक वॉशरूम का या एक छोटी खिड़की का भी बहुत महत्व हो। तो हर चीज का महत्व है इस रचना में। हमें भी अपने महत्व को समझकर, अपनी योग्यताओं को जानकर उन्हें कार्य में लगाना चाहिए। एक कमी है, उसकी ओर कभी कभी मनुष्य का ज्यादा ध्यान रहता है, जो मनुष्य को निराशा में ले जाती है। मनुष्य के पास 10 विशेषताएं हो सकती हैं, लेकिन एक कमी कभी कभी हावी हो जाती है और मनुष्य अपनी 10 विशेषताओं को भूला रहता है। उन 10 विशेषताओं का भी ज्ञान हो, इसे कमी का भी ज्ञान हो, तो मनुष्य को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता।
बिल्कुल, मतलब विशेषताओं को बढ़ाते चलें और कमियों को भी दूर करने का लक्ष्य जरूर रखें। लेकिन बात जहां रहते जी कंपेयर करने की आती है कि जब हम दूसरों को देखते हैं कि वो बहुत तेजी से आगे बढ़ने लगा है, या वो किसी भी फील्ड में बहुत परफेक्ट है, या उसका नाम होने लगा है, तो कई बार हमें लगता है कि हम भी कुछ ऐसा कर जाएं। लेकिन शायद वो वाली जो विशेषता है वो मुझ में नहीं है, जो वही वाली बात कि मेरी विशेषता या मेरी योग्यता कुछ और है, तो यहां क्या सजेस्ट करेंगे?
बिल्कुल ठीक बात है, कंपैरिजन मनुष्य अच्छे ढंग से भी करता है कि भाई वो व्यक्ति इतना अच्छा कार्य कर रहा है, हम क्यों ना करें। ये तो बहुत अच्छी बात है, इसको कंपैरिजन न कह के हम कंपटीशन कहेंगे, और ये कंपटीशन मनुष्य को बहुत आगे बढ़ाता है। लेकिन कंपैरिजन हमें अशांत कर दे, कंपैरिजन हमारी खुशी को छीन ले, इसकी आवश्यकता नहीं है। कंपैरिजन करने वाला व्यक्ति अपने को देखना भूल जाता है, वो अपनी कमियों को भी ठीक नहीं कर पाता, अपनी योग्यताओं का भी यूज नहीं कर पाता। और कंपैरिजन करने से ही संसार में बहुत सारी अशांति है, बहुत सारे केसेज होते हैं, झगड़े हो जाते हैं, कई बार अच्छे अच्छे मनमुटाव हो जाते हैं। तो इसलिए इससे तो बचना चाहिए। एक हेल्दी कंपटीशन बहुत सुंदर है, लेकिन कंपैरिजन अगर इस रूप से किया जाता है, इसको भी हम कहेंगे हेल्दी कंपैरिजन, कि फलाना व्यक्ति इतना अच्छा कर रहा है मैं भी करूं, तो ये बहुत अच्छी बात है।
बिल्कुल, मान लीजिए नेचुरली उसमें कुछ चीजें हो सकती हैं, नेचुरली मुझ में वो चीजें नहीं है, तो क्या वो चीजें ली जा सकती हैं, उसी लेवल पे ली जा सकती हैं और उसी लेवल तक पहुंचा जा सकता है?
जैसे हम चर्चा कर रहे थे, हर व्यक्ति की अपनी अपनी योग्यताएं हैं। ईश्वरीय ज्ञान में हम ऐसे कहते हैं, हर व्यक्ति का अपना अपना पार्ट है। एक व्यक्ति एक फील्ड में आगे बढ़ रहा है, हम अगर उसी फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमें वो योग्यताएं अपने भरनी चाहिए। परंतु यदि हम ऐसा नहीं कर पा रहे तो हमें समझ लेना चाहिए हमारा फील्ड कुछ और है, उसको जानकर हम उसकी ओर आगे बढ़ें तो शायद हम सहज सफल होंगे और सहज उस लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे जैसे इस व्यक्ति ने वो लक्ष्य प्राप्त किया।
जैसे कई लोग हैं रहते जी, फॉर एग्जाम्पल अब हमारे देश में क्रिकेट का क्रेज बहुत है, हमारे पास बहुत सारे ऐसे मेल आते हैं यूथ के कि हम क्रिकेटर बनना चाहते हैं और उस फील्ड में नाम कमाना चाहते हैं, बहुत आगे बढ़ना चाहते हैं। हमारी शुभकामनाएं रहती हैं कि ओके आप आगे बढ़ें, लेकिन वही वाली बात आ जाती है, क्या मेरे अंदर वो खासियतें हैं, वो योग्यताएं हैं, टैलेंट हैं जो मैं यहां आगे बढ़ूं तो बढ़ सकता हूं। कई लोग गायक बनना चाहते हैं, जैसे संगीतकार की बात हमारी कई बार हुई थी कि मैं बनना चाहता था लेकिन पेरेंट्स ने बनने नहीं दिया, तो ये वाली बात रहती है कि है नहीं वैसी क्वालिटीज, मान लो मुझे लगता है कि थोड़ी कम है या जितनी चाहिए उतनी नहीं है, तो यहां फिर क्या करें कि उस फील्ड में आगे बढ़ें, उस योग्यता को बढ़ाते चलें या कुछ और ढूंढा जाए?
कई मनुष्य यही सोचते हैं, क्रिकेटर का बहुत नाम हो रहा है या उनको पैसा बहुत मिल रहा है
जी,
फुटबॉल जो खेल रहे हैं उन्हें बेचारों को कोई जानता नहीं दुनिया में, या और बहुत सारे जो गेम्स चल रहे हैं उन्हें तो कभी कोई रिकॉग्नाइज करता ही नहीं, ना उन्हें इतने पैसे मिलते। तो मनुष्य सोचता है कि यार ये फील्ड बहुत अच्छा है, पर मान लो हर एक को तो उसमें न जा सकते, न सफलता होंगी। जितनी इंडिया की टीम है मान लो 10-15 होंगी, हर स्टेट में एक एक होगी, फिर हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी एक एक होगी, अपने स्कूल कॉलेजों की भी एक एक बनाते हैं, मिलिट्री वाले भी अपनी बनाते हैं, तो देख लेना चाहिए कि उसमें हम सफल होते हैं या नहीं। मनुष्य को अगर लगन ही है तो वो प्रयास करे, अच्छा सब कुछ करे, परंतु यदि वो पाता है कि हम इसमें सफल नहीं हो पा रहे हैं तो अपने जीवन को निराशा से न भर दें, फिर दूसरा फील्ड चुने जिसमें सहज सफलता मिल सकती है। क्योंकि किसी भी फील्ड में सफल होने के लिए उसकी संपूर्ण जानकारी, उसमें संपूर्ण परफेक्शन तो होनी चाहिए।
एक एज होती है ब्रदर जी, मान लीजिए मैं 15 साल का हूँ, 16 साल का हूँ, 14 साल का हूँ, एक ऐसी एज जहाँ से मुझे एक रास्ता चुनना है, मैं अपनी इन योग्यताओं को कैसे समझूं कि मैं किस चीज के लिए बना हूँ, मेरे अंदर कौन सी ऐसी टैलेंट है जिसके द्वारा मैं शिखर पे पहुंच सकता हूँ। क्योंकि मुझे लगता है कि कई बार वो चीजें ना हम परख नहीं पाते, समझ नहीं पाते, या हमारे आसपास के लोग भी शायद उस चीज की ओर हमें प्रेरित नहीं कर पाते या ध्यान नहीं दिला पाते, क्या करें?
देखिए, इसमें 14-15 साल की आयु में हर बच्चा इस बात का सिलेक्शन नहीं कर सकता है
जी।
उनके पेरेंट्स या जो भी उनके साथी हैं, जो बड़े हैं, वो इसमें यदि एक उचित निर्णय लें उनकी योग्यताओं को जानकर, तो ये ज्यादा सार्थक होगा। क्योंकि बच्चे तो ये देख रहे हैं कि क्रिकेटर का बहुत नाम है, सबको एक ही लगन है हम भी उधर ही चलें, लेकिन सब तो जा नहीं सकते, सब में वैसी योग्यताएं भी नहीं होती। लेकिन अगर योग्य है तो जैसे स्टेप्स हैं, पहले वो अपने यहाँ खेलेंगे, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे खेलेंगे, फिर स्टेट लेवल पे खेलेंगे, फिर रणजी ट्रॉफी, जैसे जैसे उनको मौका मिलेगा। इसमें अनेक चीजें काम करती हैं उनकी योग्यताओं के साथ। लक भी एक बहुत बड़ी चीज है जिसकी चर्चा हम सदा ही करते रहते हैं उस पर भी। तो कुछ बड़े लोग और इनको मिलाकर ध्यान दें, हमारे यहाँ सोशियोलॉजिस्ट भी ऐसा ये काम करते हैं, उनकी भी राय ले ली जाए कि सोर इनका विशेष आकर्षण है या किस फील्ड में ये सहज आगे बढ़ेंगे। कई फील्ड ऐसे होते हैं कि हम योग्य बनते हैं, जबरदस्ती मेहनत करके उस फील्ड में आगे बढ़ते हैं, फिर पूरा जीवन टेंशन में व्यतीत करते हैं क्योंकि वो हमारा फील्ड नहीं था, लेकिन हमने बहुत कड़ी मेहनत की और हम पहुंचे कहीं ना कहीं तक। लेकिन एक दूसरा व्यक्ति होता है, उसका नेचुरल वो टैलेंट होता है जो उसको निरंतर आगे बढ़ाता रहता है, पूर्व जन्मों के भी ये संस्कार होते हैं। तो इसमें बच्चे ही सब कुछ निर्णय नहीं ले सकते, उनके गार्जियन, उनके पेरेंट, कोई भी उनके अच्छे साथी या उनके शिक्षक, मान लो कोच मैन ही है, जो भी है, वो उनको अच्छी मदद कर सकते हैं ऐसा फील्ड चुनने के लिए।
एक 17 साल के लड़के का हमारे पास मेल आया था बरोडा से ब्रदर जी। अब वो 17 साल का हो गया है, अब तक उसको क्रिकेट में वैसी रुचि नहीं थी, लेकिन अब अचानक जागी है और वो कहता है कि अब मैं इसी फील्ड में ही आगे बढ़ना चाहता हूँ। और जैसे भाई साहब बताते हैं कि यदि हम मेडिटेशन करें, अच्छा विजन बनाएं, तो कोई भी कार्य असंभव नहीं है, तो क्या मुझे इस फील्ड में आगे बढ़ना चाहिए?
देखिए, अगर उसमें योग्यता है, वो अच्छा बैट्समैन है या अच्छी बॉलिंग करता है, तो उसको जरूर इसमें जाना चाहिए। और राजयोग तो बहुत अच्छी मदद इसमें करता ही है, सवेरे उठ के अच्छे संकल्प करें, एक अच्छे विजन बनाएं, मैं खेल रहा हूं और फटाफट रन बन रहे हैं, मेरे चौके लग रहे हैं, छक्के लग रहे हैं, ये बिल्कुल और ताली बज रही है और वाह वाह हो रही है, ये विजन भी लोग बना लें। अगर सचमुच उसमें ये योग्यता है, जरूर नहीं, वो बचपन से ही हो, अभी अच्छा है, इसने 17 साल हुए तो 12वीं तो कर ली होगी, और इस लंबे समय में इसने अपनी पढ़ाई पर ध्यान दिया, ये बहुत अच्छी बात है। और अगर अब उसके अंदर ये योग्यता जगी है तो इट्स ब्यूटीफुल थिंग, वो इसमें सफल होगा और इसमें उसको आगे बढ़ना चाहिए।
इसे कैसे परखें ब्रदर जी? कई बार मैं खुद कंफ्यूज होता हूँ कि एक कई बार कोई शौक हावी हो जाती है, एक सनक सा चढ़ जाता है कि नहीं अब ये कार्य करना ही है, और एक होता है कि शायद वैसी मेरी वाली योग्यताएं नहीं है, तो मैं कैसे समझूं कि शायद ये सनक थोड़े दिन के लिए रहेगी, उसके बाद खत्म हो जाएगी, वैसी मेरी योग्यता नहीं है, तो शायद इस चीज को मुझे ज्यादा तवज्जो नहीं देना चाहिए, अपनी जो नेचुरल टैलेंट है उस पर ध्यान देना चाहिए, कैसे आप इस लाइन को क्लियर करेंगे?
देखिए, बच्चे तो बचपन एक ऐसा काल होता है जी, ये 20 साल तक का भी, कि जो सनक उनको लग गई,
हाँ, कि ये भी बनो, वो भी बनो, हाँ, वो भी बनो।
कईयों का ऐसा भी होता है कि भिन्न भिन्न फील्ड उन्हें अच्छे लगते हैं, पढ़ाई भी अच्छी लगती है, मान लो वो होशियार ही हैं, तो किसी को गीत गाना बहुत अच्छा लगता है, उनको ये भी नहीं होता कि इसमें हमारी इनकम होगी या नाम होगा, लेकिन दे एंजॉय इट, तो उनको सिंगिंग का बहुत अच्छा शौक रहता है। ऐसे ही कोई और अच्छे होते हैं, हमने देखा अच्छे अच्छे लोग डांसिंग में बहुत आगे बढ़ते हैं और उसको पसंद करते हैं। हाँ, उन्हें ये नहीं होता कि लोग हमें बहुत पसंद करेंगे, लेकिन वो अपने उस चीज को एंजॉय खुद भी करते हैं। तो इसमें देख लेना चाहिए कि कौन सी चीज उनके लिए बड़ी नेचुरल सी है और कौन सी चीज में उन्हें बार बार असफलता हो रही है या मेहनत करनी पड़ रही है। ये भी एक परफेक्ट मापदंड तो नहीं हो सकता, क्योंकि कई बार असफलता मनुष्य को सफलता की ओर ले जाती है, कई बार कड़ी मेहनत से मनुष्य शिखर पर पहुंच जाता है। लेकिन अगर कोई नेचुरल टैलेंट किसी के साथ काम कर रहा है और उसमें मनुष्य मेहनत करता है, तो वो ज्यादा सफल होता है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि केवल बच्चों को नहीं, उनके साथ कोई और होने चाहिए और दोनों के विचारों में भी हारमनी होनी चाहिए। दोनों मिलकर एक दूसरे को कन्विंस करें, बच्चों को कन्विंस करें कि ये फील्ड तुम्हारे लिए अच्छा है तो ज्यादा अच्छा चुनाव होगा।
कई बार कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो जाता बेटा जी कि बच्चों की रुचि कुछ और है? जैसे एक सनक वाली बात है कि नहीं नहीं मुझे यही करना है यही करना है, पेरेंट्स कई बार समझाते हैं कि नहीं नहीं ये ठीक नहीं है ये करो, तो यहाँ पे भी कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है और समझ में नहीं आता कि किस रास्ते पे आगे बढ़ा।
इसमें पेरेंट्स को अपने बच्चों को साथ देना चाहिए क्योंकि लाइफ बच्चे का है, इसलिए अगर उनको किसी चीज की सनक है और वो समझते हैं कि हम इस कार्य में सफल होंगे तो उन्हें चलने देना चाहिए एक दो साल और फिर जैसा भी रिजल्ट आए वो सफल होते हैं या नहीं होते, लेकिन उनको उमंग बराबर दिलाना चाहिए और असफलता होने पर उन्हें ये ना कहना चाहिए कि देखा हमने मना नहीं किया था तुम फिर वहां चले गए, टाइम वेस्ट कर रहे हैं, इम्पोर्टेंट टाइम है। ये भी नहीं, अगर उसने एक फील्ड चुन ही लिया है तो माँ बाप या और जो भी उसके साथी है उन्हें उसको एनकरेज करना चाहिए कि अब तुम करो अच्छे से अच्छा,
मतलब उसे खुद अनुभव करने देना चाहिए तो वो सीखता चलेगा कि भाई हाँ क्या सही है क्या गलत है। मान लीजिए बेटा जी मेरे पास वो नेचुरल टैलेंट्स नहीं है लेकिन मेरी रुचि है, तो क्या मैं उन टैलेंट्स को उन विशेषताओं को जगा सकता
हूँ? बिल्कुल, अगर रुचि बहुत है और मनुष्य मेहनत करता है, टैलेंट तो वो है ही, तभी तो उसने वो फील्ड चुना या थोड़ा भी कदम आगे बढ़ाया, लेकिन वो सुसुप्त अवस्था में है, थोड़ा राजयोग का अभ्यास भी करें, थोड़ा जो हम सबकॉन्शियस माइंड की प्रैक्टिस बताते हैं सवेरे उठते वो भी करें तो ये सोए हुए टैलेंट भी जग जाते हैं।
मतलब हम बना सकते हैं अपने आप को जैसा बनाना चाहें, केवल वो रुचि और लगातार उस अभ्यास की जरूरत है। एक और बात इस पे बताइए जी, कई बार कहते हैं हम कि अपने अंदर की आवाज सुनो, क्योंकि हमारी अंदर की आवाज कभी भी हमें धोखा नहीं देती है या वो हमें सही सही गाइड करती है या उस ओर खींच रही होती है जो हमारा डेस्टिनी है या जहां तक हमें पहुंचना होता है। तो क्या ये बात सही है या फिर हम सही सही अपने अंदर की आवाज को कैसे सुने कैसे समझें?
देखिए ये बात बहुत ही सूक्ष्म है। एक चोर को जो अंदर से आवाज आएगी वो ये आएगी कि आज फलानी जगह चलना है, माल बहुत मिलेगा।
जी
एक दूसरे व्यक्ति को जिसका जहां रुचि है या जिसके जो संस्कार पड़ गए, हमारा अंतर्मन उसी तरह बिहेव भी करता है ना, एक्ट करता है। इसलिए ये अंदर की आवाज सुनना, इसके लिए विवेक शक्ति बहुत ही प्रबल होनी चाहिए। अब हर व्यक्ति कहे मेरे अंदर से तो ये प्रेरणा आ रही है मुझे, तो सारा खेल बिगड़ जाता है, क्योंकि हम अपने एक विशाल कार्य में ये चीज देखते हैं, नोट करते हैं कि हर व्यक्ति अगर अपनी आवाज को सुन के कार्य करेगा तो संगठन छिन्न भिन्न हो जाता है। फिर जो एक जिम्मेदार व्यक्ति है वो जो उचित समझता है लोग उसको फॉलो नहीं करेंगे, हर व्यक्ति कहेगा मेरे अंदर की आवाज ये है, मुझे आत्मा की आवाज सुननी ही चाहिए, तो आत्मा की आवाज अच्छी भी हो सकती है लेकिन सुनने वाले की विवेक शक्ति पे डिपेंड करता है कब कौन सी आवाज आ रही है उसको। इसलिए इसको परफेक्टली सत्य मान कर फॉलो नहीं करना चाहिए कभी भी।
तो ये बात जो कही गई ब्रता जी की अंदर से कभी भी गलत आवाज नहीं आती?
नहीं, अंदर से गलत आवाज भी आती है, जैसे
मैंने
कहा
हो गई है।
हाँ, क्योंकि अब हमारे अंदर बहुत कुछ है, अनेक मनोविकार हैं, कई स्वार्थ है। मान लीजिए एक व्यक्ति के अंदर वायलेंट संस्कार जागृत हैं और उसने प्लान बनाया हुआ इस व्यक्ति को खत्म करना है, तो उसके जो अंदर आवाज आएगी अब वो उसी तरह की आएगी, उसके विचार उसी तरह के होंगे, इसने मुझे ये कष्ट दिया, इसने समाज को ये बुरी चीज दी है, ये सबके लिए बहुत बड़ा शत्रु है, इसको हटा ही देना चाहिए, और वो उसकी प्लानिंग बनाएगा। तो हमारे अंदर की आवाज के पीछे अंदर के संस्कार, पिछले संस्कार, हमारे पिछले कर्म, ये सब एक साथ मिल के वो आवाज पैदा करते हैं। लेकिन अब जब हम प्योरिटी के मार्ग पे चलते हैं तो प्योरिटी और वो इम्प्योरिटी दोनों मिलके कहीं कहीं वो अंदर की आवाज निकालते हैं। इसलिए हम देखते हैं कि प्योरिटी के मार्ग पे चलने वालों की आंतरिक आवाज हर समय अच्छी नहीं होती है, वो उनको गलत मार्ग पर भी ले चलती है। ये केसेस प्रैक्टिकल में हमारे पास आते रहते हैं, जैसे किसी ने मुझे कहा कि कि मुझे तो अंदर से आवाज आई कि अब डेली सवेरे उठने की जरूरत नहीं, तो बहुत उठ लिया। मैंने कहा ये तुम्हारी आवाज कहाँ से आई है? अब भगवान की आवाज भूल गए, उसने क्या कहा हुआ रोज वो कह रहा है। फिर एक दूसरे का केस था कि नहीं, मैंने ईश्वरीय महावाक बहुत सुन लिया, अब अंदर से आवाज आती है कि बहुत हो गया, अब सुनने की जरूरत नहीं, थोड़ा रेस्ट करना चाहिए, सवेरे थोड़ा सो लेना चाहिए। तो इससे पता चलता है कि सब कुछ मिक्स होके हमारे अंदर वो फीलिंग्स जागृत हो रही, इसलिए हम अपनी आवाज को भी सुने नो डाउट, और जरूरत हो तो उसको वेरीफाई करा ले अपने साथियों से, अपने बड़ों से।
बिल्कुल, मतलब आवाज आती तो है, लेकिन आपने स्पष्ट कर दिया कि कई बार उसमें बहुत मिक्सचर भी रहता है। ब्रदर जी, क्या ऐसे नहीं होता कि हम बहुत शांति में, बहुत ध्यानस्थ, बहुत एकांत में बैठे हैं, उस समय जो आवाज आती है शायद वो सही सही सी आवाज उसमें मिक्सचरिटी,
वो भी सही हो सकती है, कुछ की सही होगी, लेकिन कुछ में वही जो मनुष्य शांत भी होता है ना, तो वो सब चीजें भी तो उसके साथ जुड़ी हुई है ना, वो भी जागृत हो जाएंगे। और जब मनुष्य का चित्त बहुत शांत होता है तो सबकॉन्शियस माइंड कभी कभी एक्टिव होता है, और उसमें जो निगेटिविटी पॉजिटिव
वो भी आ रहा है। जी जी जी, तो चलिए ब्रदर जी, यदि हम अपनी आवाज ना सुने तो फिर किसकी आवाज सुने?
तो हम भगवान की आवाज सुने, अपनी सारी नीति का निर्धारण करें ईश्वरीय ज्ञान के द्वारा, उसके महावाक्यों के द्वारा। उसने जो हमें राय दी वो बिल्कुल परफेक्ट है, उसने जो कुछ हमें कहा है वो हमारे लिए संपूर्ण रूप से कल्याणकारी है। हमारी इच्छाएं लिमिटेड हो सकती हैं, हमारी इच्छाओं के पीछे कहीं हमारी कोई कामना हो सकती है, कहीं हमारे कोई सेल्फिश मोटिवेशन हो सकता है। ठीक है, हमारी अपनी भी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन यहाँ पर हम अपने को समर्पित कर देते हैं, अपनी बुद्धि को, अपने विचारों को, और जो परमात्मा संदेश है, जो उसकी एडवाइस है हमारे लिए, उसको हम ट्रूली फॉलो करते हैं तो कहीं भी हमें धोखा नहीं मिलेगा।
बिल्कुल, मतलब परमात्मा की आवाज को हम सुने और उनकी आज्ञाओं पर चले। यहाँ पे भी क्या प्रश्न नहीं उठ सकता ब्रदर जी कि वो जो कह रहे हैं वो मेरी विवेक की कसौटी पे कसा जाए, और यदि उसे मेरा अंतर स्वीकार नहीं कर रहा है तो कई बार मैं उसे भी पूरी पूरी तरह फॉलो नहीं कर पाता।
ये बातों के साथ होता है, लेकिन भगवान की बातों को अपने विवेक की कसौटी पर नहीं कसना चाहिए। जैसा मैंने कहा, हर एक के विवेक की अपनी एक लिमिटेशन है, और हर व्यक्ति ने जो स्टडी की है, जो उसकी मान्यताएं हैं पहले से, उस पर कस के देखता है नई बातों को, उससे वो एनालाइज करता है कि ये जो भगवान ने कहा है सत्य है या नहीं, ये विचारधारा गलत हो गई, भगवान ने जो कहा उसके आधार से हम अपनी मान्यताओं को चेक करेंगे वो कितनी सत्य है कितनी गलत है। इसलिए जहाँ ईश्वरीय ज्ञान की बात है वहाँ हमें अपने विवेक का इस तरह प्रयोग नहीं करना चाहिए, बल्कि इस तरह करना चाहिए कि इस ईश्वरीय बात को मैं अपने जीवन में कैसे अपनाऊं, इस बात को मैं आगे कैसे बढ़ाऊं, या इसका चिंतन मैं कैसे करूं, या इससे समाज का कल्याण कैसे हो सकता है, वो चिंतन करना विवेक का सदुपयोग करना है।
लेकिन इतनी समय से जो मेरी मान्यताएं चली आ रही हैं, एकाएक मैं उसे कैसे छोड़ सकता हूँ? हाँ। नई मान्यता को लेकर, मतलब जो मैंने लिख लिया है अब तक अपने स्लेट पे, उसे एकदम मिटा देना और नई चीज लिखना, ये इतना सहज भी तो नहीं?
बिल्कुल, इसमें भी कठिनाई बहुतों को होती है, लेकिन अगर हमें पूर्ण विश्वास हो गया है कि ये परमात्मा मत है, फिर अपनी मतों को हमें बहुत जल्दी समाप्त कर ही देना चाहिए, अन्यथा हम परमात्मा मत को, उसके श्रीमत को ठीक से पहचान नहीं पा रहे हैं। देखिए, एक बहुत बड़ी चीज हमें मिल जाए तो फिर हमें अपनी छोटी चीज को छोड़ना ही पड़ेगा। तो ये जान करके वो ज्ञान का सागर है, परम कल्याणकारी है, हमें उसकी मत पर विश्वास करना चाहिए और अपनी मत को, चलो सदा के लिए नहीं तो कुछ समय के लिए, एक साइड में रख देना।
बस एक चीज विशेष बात है, जिस चीज में एक सबसे मूल बात जो मुझे लगता है, यदि मुझे विश्वास हो जाए कि हाँ यही भगवान है, तब तो मैं आंख बंद करके दौड़ना शुरू कर दूंगा कि आप जो कहोगे मैं सब कुछ मानूंगा। यही चीज नहीं हो पा रही है बहुत सारे लोगों से, जिनकी हो गई। ब्रह्मा कुमारी में लाखों भाई बहने हैं जो बिल्कुल परमात्मा की आज्ञा पे चल रहे हैं, लेकिन लाखों करोड़ों ऐसे लोग हैं शायद जो विश्वास नहीं कर पा रहे हैं, उन्हें क्या कहेंगे?
तो देखिए, हमारे यहाँ फिजिक्स और मैथमेटिक्स में जब हम प्रॉब्लम्स हल करते हैं तो कहते हैं सपोज दिस इज इक्वल टू ए, और फिर उसको लेकर आगे बढ़ते हैं और जो फाइनल रिजल्ट आता है उससे उस ए को वैल्यूएशन देते हैं। ऐसे ही मान लो कि ये राजयोग परम सत्य है, हम इसका अभ्यास करके देखते हैं, अगर इससे हमें सुंदर अनुभूति होती है, अगर इससे हमें अपना मार्ग मिलता हुआ दिखाई देता है, तो वी विल डेफिनेटली फॉलो इट, अदरवाइज कीप इट असाइड।
बिल्कुल, मतलब करके देखना ही होगा, और यदि रिजल्ट आपको वो सुख शांति आनंद जो आप चाहते हैं मिलता है, आप चलना शुरू कर दें। शुरुआत जहां से हमने की थी वैद्य जी, अपने अंदर की जो विशेषताएं हैं, गुण हैं, अब यदि मैं इन्हें संपूर्ण रूप से जागृत करना चाहता हूं, विकसित करना चाहता हूं, क्या करूं?
तो हमें आत्मिक स्वरूप में स्थित होना होगा, अपने चित्त को एकाग्र करना होगा परमात्म स्वरूप पर, तो ये सब सोई हुई शक्तियां जग जाएंगी।
बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया प्रताप जी, सुंदर और गहन प्रकाश आपने दिया है। इस पर तो लंबी चर्चा हो सकती है, मैं पुनः कभी आपसे इस विषय पर जरूर प्रकाश लूंगा। आज की सुंदर चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मित्रों, बहुत ही महत्वपूर्ण है ना कि हम अपने अंदर की जो विशेषताएं हैं, गुण हैं, उन्हें संपूर्ण रूप से विकसित कर लें, या अपने आप को रिस्पेक्ट दें कि मेरे अंदर जो चीज है वो शायद दूसरे में नहीं है, तो क्यों ना मैं अपनी क्वालिटीज को डेवलप करूं बनिस्पत इसके कि मैं दूसरों के साथ अपने आप को कंपेयर करूं। इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम खुद को देखें, अपने ऊपर ध्यान केंद्रित करें और अपनी विशेषताओं को बढ़ाते चलें। एक मोटिवेशनल गुरु एक स्पीच दे रहे थे और एक कमरे में थे, सभी लोग सेमिनार हॉल में थे। उन्होंने कहा कि इस कमरे में सबसे अच्छी चीज कौन सी है, एक एक को बुलाया। किसी ने कहा पंखा बहुत अच्छा है, किसी ने कहा दीवारें बहुत अच्छी है, किसी ने कहा कि ये अच्छा है, किसी ने कहा वो अच्छा है। सबने अपने अपने जवाब दे दिए, किसी ने ये नहीं कहा कि मैं सबसे अच्छा हूं। तो मोटिवेशनल गुरु ने यही कहा कि देखिए, आप सबने बाहरी चीजों को तो देखा, लेकिन किसी ने ये नहीं देखा कि मैं यूनिक हूं, मैं सबसे बेहतर हूं। और जिस दिन आप ये मानना शुरू कर देते हैं कि मैं सबसे बेहतर हूं, मैं जो कार्य कर सकता हूं कोई और नहीं कर सकता, अर्थात मैं संसार में बिल्कुल यूनिक हूं, मेरा चेहरा सबसे अलग है, मेरे विचार अलग हैं, और भगवान ने बहुत सारी ऐसी क्वालिटीज मेरे अंदर भरी हैं जिनके कारण मैं सबसे अलग हूं, और मुझे इन्हीं क्वालिटीज को डेवलप करना है। तो मित्रों, बहुत ज्यादा अपने ऊपर ध्यान देते हुए अपनी विशेषताओं को बढ़ाते चलें, बुराइयों को दूर करते चलें, और यदि दूसरों को देख भी रहे हैं तो उनकी अच्छाइयों को भी अपने जीवन में अवश्य लाएं। और एक महत्वपूर्ण बात जो भ्राता जी कह रहे थे कि परमात्मा, परम सत्ता, जो सचमुच हमारे अंदर बहुत ज्यादा शक्तियां भरने वाले हैं, उन पर भी यदि संपूर्ण रूप से हमारा एक निश्चय हो जाता है, विश्वास हो जाता है, तो पश्चात इस मार्ग पे चलना हमारे लिए बहुत सहज हो जाता है। तो करके जरूर देखिएगा जिस समीकरण की बात भ्राता जी कह रहे थे, यदि इस मार्ग पे चल के हमें वो सुख, वो शांति, वो सत्य, वो आनंद प्राप्त हो जाता है, तो क्यों ना हम भी इसे करके देखें। आजमाइएगा जरूर, और जीवन में यदि सफलता प्राप्त होती है तो जरूर इस मार्ग में आगे बढ़िएगा। हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं आपके साथ है। कल पुनः मुलाकात होगी, आज के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।
धैर्य और दृढ़ मनोबल से कर दे तू पल भर में मुश्किलें आसान, अपनी समकरणी के पावन जल से।